हरे कृष्णा, श्री कृष्ण बल्ला मंदिर इस्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद्गीता के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सातवें अध्याय भगवद्गीता के सातवें अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग भगवत भगवत ज्ञान। सो उसके हमने दो श्लोक पहले पढ़े थे जिसमें भगवान अर्जुन को मई आसक्त मनहा पारथ योगम युन्यम मदाश्रय असंख्यम समग्र माम यथा ज्ञासी तत्ण। तो मुझ में मन आसक्त, इसका मतलब बहुत उत्तम भक्ति का वर्णन है ये। उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों की जानकारी होगी, उसके लिए साधन क्या है? सबसे मुख्य साधन श्रवण। और श्रवण की प्रक्रिया काम कैसे करती है? श्रवण की प्रक्रिया काम कैसे करती है जिसमें गुरु परंपरा से हाँ, पहले नित्य श्रवण करना चाहिए, तब भक्ति निष्ठा वाली होगी, फिर रजो तमोगुण चला जाएगा, तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए आसक्ति। ये पूरा पांच श्लोक है, ये है श्रवण की प्रक्रिया। और दूसरे श्लोक में भगवान के ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इति वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञात यज्ञात अने भूयो भूयो, दोबारा मोह में न कुछ और जानने के लिए नहीं रहेगा न विशिष्यते। तो ज्ञान और विज्ञान के साथ आपको मैं सब समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ज्ञान भगवान के स्वरूप का है और विज्ञान उसकी अनुभूति है कि भगवान का स्वरूप जैसे श्याम सुंदर है, तो भगवत ज्ञान है। तो इस ज्ञान को क्या कहा जाए कोई पूछे तो भगवत संबंधी ज्ञान। ये आत्मा परमात्मा वाला ज्ञान केवल नहीं है, ये भगवत संबंधी ज्ञान है। अब ये ज्ञान विज्ञान कितना दुर्लभ है, इसके लिए तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक का उद्देश्य क्या है? जो भगवान दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं उसकी दुर्लभता, वो बहुत दुर्लभ है। अच्छा, मैंने एक शब्द अभी कहा दिव्य ज्ञान, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? जीव जगत और जगदीश, ये तो एक भाषा है, ये है वेदों की भाषा, और प्रभुपाद जी की भाषा में इसको क्या कहेंगे? जीव आत्मा के स्वरूप का पता लगाना, जगत का पता लगाना और दोनों के स्वामी का। ठीक है, अब ये जो मनुष्याणाम सहस्रेशु यत् हाँ कश्चित यतति सिद्धयताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, इसका उद्देश्य क्या है कि ज्ञान भगवत ज्ञान और विज्ञान बहुत दुर्लभ है, ये है मुख्य उद्देश्य। अब मनुष्याणाम सहस्रेशु का मतलब हजारों इंसानों में से, कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक यतनशील बड़ा शास्त्र का अनुभव करे पढ़े तो आत्मा के विषय में जान सकता है, शरीर से आत्मा अलग है ये जान सकता है, अधिक से अधिक परमात्मा तक जान सकता है। तो ये किसका लक्षण था, ये किसका लक्ष्य था? आत्मा को जानना, शरीर को अलग जानना, आत्मा को अलग जानना, फिर परमात्मा को जानना, ये पहले छह अध्यायों का उद्देश्य था। पहले छह अध्यायों में यही कुछ बताया गया है, तो इसका मतलब पहले छह अध्याय वाले हजारों में कोई एक है। अब जो ये आत्मा परमात्मा को जान चुके हैं उनमें हजार ऐसे हैं जो जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनमें से कोई एक होता है जो श्री कृष्ण को तत्व रूप से जानता है। ये श्लोक का अर्थ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बताया है कि असंख्य जीव हैं, कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ खड़े नहीं चल सकते हैं। अचल को छोड़ दो, जो चल हैं उसमें कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ समुद्र में रहने वाले जलचर हैं और कुछ धरती पे चलने वाले। आकाश को छोड़ दो, धरती समुद्र को छोड़ दो, धरती वालों को ले लो। धरती में भी सबसे कम मानव है, पशु है, मानव सबसे कम है। और मानव में आधे तो असभ्य हैं, आधे नास्तिक हैं, बाकी बचे आधे मानव। आधों में आधे जो है वो उनमें से आधे तो धर्म के नाम की बात करते हैं, हम धार्मिक हैं लेकिन धर्म को जानते नहीं हैं। तो चौथा ऐसा बच गया जो धर्म को जानते हैं। जो चौथा ऐसा धर्म को जानते हैं उसमें करोड़ 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 कोटि कोटि कर्मी हैं, वो केवल कर्म को जानते हैं। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ कर्मियों में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। फिर कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ऐसे करोड़ ज्ञानियों उनमें से कोई एक मुक्त होता है। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, करोड़ों जो मुक्त हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। और फिर ये प्रसिद्ध श्लोक है वहां का, कौन सा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद का, ये श्लोक इसके बाद है। तो वो जो दुर्लभ भक्ति है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है। और एक और श्लोक भागवत का है ऐसे दुर्लभता की बात करने के लिए, कोटिशु नारायण प्रायण, एक भागवत का श्लोक किसी को याद है, हाँ, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण कोटिशु अपि दुर्लभ नारायण प्रायण। और इस सातवें अध्याय में दो और श्लोक हैं जो इस दुर्लभता की बात करते हैं। इस सातवें अध्याय में दो कौन से श्लोक हैं जो इस जैसे हैं, एक है 7:19 सुमात्मा समात्मा से दुर्लभ, ओ हाँ हाँ बहुना, और दूसरा है 7:26 उसमें भी लिखा है माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो सातवें अध्याय में तीन ऐसे श्लोक हैं जिससे भगवान को जानना दुर्लभ है, एक 3, एक 19 और एक 26, ठीक है। सो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं अलग स्तर के मानव हैं, हजारों में से कोई एक कम से कम इच्छुक होगा आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का, और वो ये जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और परम सत्य क्या है। मतलब ऐसा कोई एक हजारों में से जानने वाला होगा। और इतना लिखने के बाद प्रभुपाद का ये भी ज्यादा लिख दिया है, मानव तो सामान्य संसार में पशु के स्तर के ऊपर है। प्रभुपाद लिखते हैं बस खाने पीने में लगे हुए, आहार निद्रा में भय मैथुन में है, ये तो कोई दिव्य ज्ञान में तो किसी की रुचि ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पहले 6 में जो वर्णन किया गया है वो है असल में यतते सिद्धये। इस श्लोक में जो यतते सिद्धये है, यतते सिद्धये का अर्थ क्या होगा, सिद्धि का यतन करने वाले, सिद्धि के लिए सावधान। और सिद्धि क्या, आत्मा की जानकारी शरीर से अलग और परमात्मा का अनुभव, उसके लिए दो साधन बचाए हैं। कौन से दो साधन है, ज्ञान योग और ध्यान योग। और दोनों से पहले आवश्यक क्या है, निष्काम कर्म योग। तो उनसे क्या पता लगता है, आत्मा है शरीर से अलग और परमात्मा है, इसको कहते हैं हजारों में से कोई एक। ये ठीक है। प्रभुपाद जी ने वो समझ सकते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। अब ये कह के प्रभुपाद जी कहते परंतु कृष्ण को समझने के लिए भक्ति चाहिए, इसका अर्थ है ज्ञान और ध्यान से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, परमात्मा को समझा जा सकता है योग से, ध्यान से, और ज्ञान से ब्रह्म को समझा जा सकता है, परंतु कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। अब कहते हैं कुछ आध्यात्मिक रास्ते वाले आध्यात्मिक साधक ब्रह्म ज्ञान जो निर्विशेष है उसका अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को जानने से आसान है उनके लिए, वो सरल है सब कुछ, भगवान है इसमें कौन सी परेशानी, कृष्ण भगवान है इसको मानना मुश्किल है। कृष्ण परम पुरुष भगवान है जो ब्रह्म के ज्ञान और परमात्मा से परे है। इसके बाद ये लिखा है देखो, और अभक्तों के लिए कृष्ण को परम पुरुष के रूप में मानना बहुत मुश्किल है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये ज्ञानी लोग कई बार कहते हैं अरे भक्ति बहुत आसान है, ज्ञान का प्रयास करके देखो, योग का अभ्यास करके देखो। प्रभुपाद कहते इतनी आसान है तो फिर आप मुश्किल क्यों कर रहे हो, आसान को कर लो ना। और फिर कहते हैं वास्तव में भक्ति आसान नहीं है, अगर नियमों से की जाए, विधि विधान से की जाए तो आसान नहीं है, और उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु से प्रमाण दे रहे हैं श्लोक का, श्रुति स्मृति प्राणादि वा पंचरात्रा विधि विना अहेतुकी एकांतिकी हरिर्भक्ति उत्पाद्येव कल्पते। इसका मतलब भक्ति कोई ऐसा नहीं है, भावुकता है, शास्त्र चाहिए, उसका आधार शास्त्र का होना चाहिए, वेद पुराण का होना चाहिए, पंचरात्र का होना चाहिए, नहीं तो केवल ऐसे भक्ति करेगा तो समाज के अंदर उत्पात पैदा करेगा। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं भले कोई ब्रह्म को रियलाइज, ब्रह्म का अनुभूति कर ले या परमात्मा की अनुभूति कर ले, परंतु कृष्ण को समझना मुश्किल है। कौन से कृष्ण को समझना मुश्किल है? यशोदा नंदन कृष्ण को समझना मुश्किल है, जो वो माँ का दूध पी रहा है उसको समझना बहुत मुश्किल है। ये भगवान है कौन मानेगा? बड़े बड़े देवता भी, ये कहां से श्लोक लिखा है प्रभु ने, थोड़ा छोटा श्लोक लिखा है देखो, मोहयंत यत सूर्य, भागवत का पहला श्लोक है, भागवत का पहला श्लोक, मोहयंति यत सूर्य, देवता मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, वरुण मोहित हो गया, कामदेव मोहित हो गया, शंकर जी मोहित हो गए, आठ आठ देवता कम से कम विमोहित हुए हैं कृष्ण की लीलाओं में। तो बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, समझ नहीं पाए कि कृष्ण ये है, ये भगवान है, उनको समझना मुश्किल हो गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो कृष्ण को जान ले। देखो ये प्रभुपाद ने वो दोनों श्लोक लिखे हैं जो हमने आपको बताए हैं चक्र, वो दोनों श्लोक हैं। देखो अब देखो, जो पहला है नो वन नोज मी, और दूसरा है महात्मा दुर्लभ, जो पहला 26वां है फिर 19वां है, ये मिलता है, ये दोनों श्लोक है लिखा है, श्लोक लिखे क्या है ना, दोनों श्लोक है ना, ये दुर्लभता की का। तो जब तक भक्ति का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो कितना भी कोई बड़ा विद्वान होगा कृष्ण को नहीं जान सकता तत्व से। शुद्ध भक्त ही भगवान की अचिंत्य दिव्य गुणों का अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान के अचिंत्य दिव्य गुणों की अनुभूति की जा सकती है, और ये भी अनुभाव की जा सकती है कि भगवान सब कारणों के आदि कारण है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, षड गुण संपन्न है, छह गुण परिपूर्ण है और भक्त वत्सल है। क्या लिखा है भक्त वत्सल के लिए? क्या लिखा है? भक्तों के ऊपर दयालु है, ठीक है। और ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को जानना। अब प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को जानने के लिए साधन क्या है, तो भक्ति रसामृत सिंधु से लिखते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवानुमुख्य जीवादौ स्वयं एव स्पृदयाद। इसका कोई अपने तरफ से अर्थ सब बता सकता है? श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला को भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसके लिए सेवा ही एकमात्र साधन है जिससे भगवान अपने आप प्रकट करते हैं उस भक्त के हृदय में अपने गुण रूप लीला को। और सेवा आदो मुखे लिखा है, मुख से सेवा शुरू करनी है, तो मुख से कौन सी सेवा है? नाम जपना और भगवत प्रसाद खाना। तो फिर भगवान अपने आप समय आने के ऊपर अपने गुण रूप नाम लीला को हृदय में प्रकाशित करते हैं। अब हम दूसरे विभाग में जा रहे हैं, तीसरे अध्याय के, सॉरी सातवें अध्याय के। सातवें अध्याय का पहला विभाग क्या है? श्रवण कृष्ण तत्व को समझना, एक श्रवण एकमात्र साधन है। और अब विभाग है कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान। ये चलेगा 12 तक, 4 से 12 तक कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान। तो चौथा नंबर श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, भूमिरापो अन्लो वायु खम मनोबुद्रेव च अहंकारम इति एयम् अहंकारम इति अयम् वे प्रकृति भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पहले तो 5 है उनका, नाम का सबको अर्थ आता है, भूमि का अर्थ सबको आता है, आपो का पानी, ठीक है, अनलो आग, वायु अनलो अनल अनिल हो तो अनलो आग है, वो बाँ एक वायु भी अनिल से, खम आकाश, और 3 और लिखा है मनो बुद्धिर अहंकार एवच। इति अयम मे, ये 8 मेरे, परंतु मुझसे अलग भिन्न है, मेरे परंतु है मुझसे अलग भिन्न अष्टदा प्रकृति, अष्टदा ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो मुझसे अलग है। और ये है अपरा प्रकृति, कौन सी प्रकृति है ये? अपरा का मतलब निकृष्ट। क्यों है अपरा? 2 कारण। अपरा प्रकृति इसके लिए है, नंबर 1 के ये चेतन नहीं है, जड़ है। दूसरा ये भोग्य है, क्योंकि इसको भोगा नहीं जा सकता, ये भोग नहीं सकती, इसको भोगा जा सकता है, भोग्य है, जड़ है और भोग्य है, अचेतन जड़ और भोग्य है, भोग नहीं कर सकते। प्रकृति क्या भोग करेगी भाई? टेबल क्या करेगी? हम टेबल को इस उपयोग में ला सकते हैं, तो ये भोग्य है। और इसके विपरीत दूसरी प्रकृति है जो अगले श्लोक में आएगी, उसका नाम है परा। परा का मतलब उत्तम। और तो उसके क्या गुण हो जाएंगे? इसके बिल्कुल उल्टे करो, क्या हो गए उसके? चेतन है और भोगता है। तो अब आप ये 2 प्रकृतियों के सामने 2 ये शब्द लिख दें, ये मुख्य बात है। अब दो श्लोकों में भगवान अपनी दो प्रकार की शक्तियों का वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपना स्वरूप, भगवान अपना स्वरूप के दोनों शक्तियों के वो स्वामी हैं ये बताना जा रहे हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, ये दो शक्तियां मेरी हैं, इसका मतलब ये मेरा स्वरूप है, मैं इनका स्वामी हूं। हरे कृष्णा। सो अब इसके बाद दिखाया कि 24 तत्व हैं सारे, यहां 8 बताए हैं परंतु प्रकृति बनी हुई है 24 तत्वों की। अब आप 24 तत्व सबको मालूम है कौन से हैं? 5 तो ये हैं, क्या इसको कहते हैं 5? ये जो पृथ्वी आकाश जल वायु को क्या कहते हैं? महाभूत। क्या कहते हैं? पंच महाभूत। ठीक है, उसके उपरांत 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, ये कितने हो गए? 20 हो गए सब मिलाकर, 20 हो गए ना। किसी को ईमानदारी से पूछूं कि 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, कोई बताओ? आंख, नाक, जीवा और त्वचा और कर्म इंद्रियां, हाथ पांव, मल मूत्र त्यागने की 2 इंद्रियां, 4 पांचवा जीवा। जीवा दो काम, दोनों है, जीवा ज्ञान भी है और कर्म भी। तो कर्म में क्या करती है जीवा? बकती है, बकती है, बोलती है। और 5 इंद्रियों के विषय कौन से हैं? कौन सा किसका विषय ये बताती है? आंख का विषय क्या है? रूप। कान का? शब्द। त्वचा का? जीभा का? रस। और अब आगे अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का विज्ञान। भगवत विज्ञान, और फिर लिखा है भगवत विज्ञान ये है कि भगवान के स्वरूप को और उनकी भिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना। भगवत विज्ञान क्या है? भगवत विज्ञान है दो काम। क्या दो काम है? पहला काम भगवान के स्वरूप का और भगवान की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना का मतलब एनालाइज करना। क्या समझ में आया? पहली लाइन का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी के? भगवत विज्ञान, भगवान के स्वरूप और उनकी भिन्न शक्तियों का विश्लेषण। भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? प्रकृति। क्या कहा जाता है? और उसका मतलब ये भगवान की शक्ति है। अब प्रभुपाद जी कुछ लिखने जा रहे हैं, वो प्रकृति है नहीं, परंतु प्रकृति उनके कारण काम करती है। अब आ रहा है प्रसंग, आ रहा है 3 विष्णु, इसको कहते हैं पुरुष अवतार। क्या कहते हैं? पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार काय के लिए हैं? भौतिक सृष्टि के लिए। किसके लिए हैं ये पुरुष अवतार? किसके लिए हैं? भौतिक सृष्टि के लिए। भगवान तीन पुरुष अवतार लेते हैं। अब लिखा ऐसे है प्रभुपाद जी की लेखनी से ऐसे लगेगा कि ये तीनों भी प्रकृति है, ऐसा प्रकृति ये नहीं है। आप पढ़ के देखें ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है पढ़ के देखिए क्या लग रहा है। यू रीड व्हाट इट लुक्स लाइक। कुछ आ रहा है समझ में? पहला, सिर्फ पहला परिच्छेद पढ़ो, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं लगता है कि ये तीनों भी प्रकृति है, ऐसे लग रहा है कि नहीं? हाँ, फिर क्या लिखा है? सातवें तंत्र में लिखा है, वो तो ठीक है, नारद पंचरात्र में लिखा है। तो प्रकृति नहीं है तीनों विष्णु, ये तीनों जो है पुरुष अवतार प्रकृति नहीं है, परंतु सृष्टि के लिए प्रकृति को चलाने वाले जगत का जो भी कार्य है ये तीन विष्णु करते। और जगत क्या है? जड़। जगत क्या है? जड़, प्रकृति, ठीक है ना? तो अब तीन विष्णु के लिए श्लोक लिखा है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप पुरुष अवतारों की बात करते हैं, इनका वर्णन कहाँ है? एक तो ये है, एक भागवत में है पुरुष अवतारों का वर्णन। तो ये तीन पुरुष अवतार हैं, इन तीनों का नाम क्या है? कारुण उदक शाही। इसका मतलब क्या? उदक का मतलब पानी, कारण सागर के अंदर शयन करने वाले विष्णु, इसका दूसरा नाम है महाविष्णु। उसके रोम कोपों से ब्रह्मांड निकलते हैं और वो सारे कारण सागर में लुढ़कते रहते हैं, लेकिन वो जड़ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा पुरुष अवतार है, उसका नाम है गर्भो दक्षाई विष्णु, गर्भ उदक में शयन करने वाले विष्णु। वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, एक जो ब्रह्मांड है कोटि ब्रह्मांड भूल एक में प्रवेश करेंगे और फिर अपने शरीर से पानी बना के आधा भर देंगे, तो उसका कहेंगे गर्भ सागर। वो विष्णु फिर अपनी नाभि से कमल का डंडा, और कमल का डंडा 14 लोक है कमल के डंडे में, नीचे पाताल लोक और ऊपर सत्य लोक, उसके ऊपर एक कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होगा और फिर एक ब्रह्मांड की सृष्टि होगी। फिर तीसरा पुरुष क्षीर दक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो परमात्मा है, सबके हृदय में कण कण में है। ये तीन विष्णु का वर्णन है। इन तीनों का काम केवल भौतिक जगत की सृष्टि के लिए है। विशेष रूप से कहा जाए कि परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है। परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये लिखा है, आगे पढ़िए। अब तीन लाइनें आगे जाके पढ़िए इसकी ट्रांसलेशन के बाद। ये भौतिक जगत भगवान की एक शक्ति का थोड़े समय के लिए विस्तार है और सारे भौतिक जगत के कार्य ये तीन विष्णु जो कृष्ण के अवतार हैं पुरुष अवतार वो कार्य करते हैं। और इन तीनों को पुरुष अवतार कहा जाता है, ठीक है?
क्या समस्या होता है तो कारण भगवान तो सही विष्णु या क्षीर तो सही विष्णु के पास जाते हैं।
हम पढ़ते हैं क्षीर सागर के पास प्रार्थना करने गए और वो क्षीर सागर इस भौतिक जगत में है, ये ध्रुव लोक के पास, इसको उसको श्वेत द्वीप कहते हैं। यहाँ तक जाते हैं, खीर सागर में प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में प्रायः सारे अवतार गर्भोदक्षा विष्णु से आते हैं, परंतु प्रार्थना करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु को। तो इसलिए क्षीरोदक्षिणाई गर्भोदक्षा से निकलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे दो बात करते हैं। वास्तव में सारे अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु से भौतिक जगत में आते हैं, ऐसे शिला रूप गोस्वामी लघु भागवत में लिखते हैं। क्या कोई प्रश्न है? सारे अवतार कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक्षा कहोगे तो भी राइट है, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों का ऐसे लिखा है, तो एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है। अवतार उसके माध्यम से आते हैं। वैसे तीन पुरुष अवतार हैं, ऐसे उससे वो आता है ऐसे नहीं, तीनों आते हैं संकृष्ण से, और संकृष्ण आता है महासंकृष्ण से, महासंकृष्ण आता है बलराम से, बलराम आता है कृष्ण से। तो ऐसे लंबा जाएंगे तो ये तीनों विष्णु संकृष्ण से, संकृष्ण महासंकृष्ण से, महासंकृष्ण बलराम से, बलराम कृष्ण से। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवत विज्ञान को नहीं जानता है, कृष्ण विज्ञान को नहीं जानता है, वो समझता है कि ये भौतिक जगत हमारे भोग के लिए है और हम यहाँ के स्वामी हैं और हम ही यहाँ के भोगता हैं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं सामान्य लोगों के, जो कृष्ण विज्ञान को नहीं जानते हैं वो जगत को अपने भोग की सामग्री समझते हैं, परंतु भगवत गीता में ऐसे नास्तिकों को झूठा माना गया है, ये सत्य नहीं है। ये जो श्लोक है जिसकी चर्चा चल रही है, इस सारी प्रकृति का कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है, वहीं से निकलती है, और भागवत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। भौतिक जगत के जो भी तत्व हैं वो भगवान की भिन्न शक्ति है, भिन्न शक्तियां हैं, भिन्न, भिन्न का मतलब भगवान से अलग। अब प्रभु ने यहां तक के ब्रह्म ज्योति जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत में है वो भी भगवान की शक्ति है। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ने, इसके बाद बड़ी लाइन ध्यान से पढ़ो, समझो क्या लिखा है। उस ब्रह्म जगत ज्योति में क्या नहीं है? कोई, इसको कहते हैं विशेषता, निर्विशेष है। ब्रह्म ज्योति क्या है? निर्विशेष है। और वैकुंठ क्या है? नीचे लिखा है वैकुंठ क्या है? सविशेष है। तो निर्विशेष मीन्स नो वैरायटी। सो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या है? निर्विशेष शून्यवादी। ये निर्विशेष वो है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति में कोई विशेषता नहीं है, परंतु वैकुंठ में आध्यात्मिक अनंत विशेषताएं हैं, परंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को ही परम लक्ष्य मानते हैं। अब प्रभुपाद जी ब्रह्म ज्योति के बाद परमात्मा की बात कर रहे हैं। ये परमात्मा भी केवल भौतिक जगत के लिए, जब जितने दिन भौतिक जगत तब तक परमात्मा, ये भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप है क्षीरोदक्षाई विष्णु का। अब एक लाइन पढ़ लो खास ध्यान से, परमात्मा का ये अस्तित्व नित्य शाश्वत जगत में नहीं है। इसका मतलब वैकुंठ में कोई परमात्मा का लोक नहीं है, नरसिंह देव का लोक है उधर, भाई वामन देव का लोक है, रामचंद्र जी का लोक है, परंतु परमात्मा का कोई लोक नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत केवल भौतिक जगत में है। भाई वहां परमात्मा को क्या करेंगे, वहां सामने भगवान बैठा है तो परमात्मा को क्या करें भाई। फोटो फोटो तब किसी का रखते हैं जब स्वयं नहीं है, स्वयं आए तो फोटो हटा देते हैं। क्या वो सिर्फ जीव आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा, वो भगवान के सामने बैठे हैं, परमात्मा को क्या करेंगे। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसलिए अतः वास्तविक परम सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है, और उसके अनंत विभिन्न शक्तियां हैं। और बाहर के अंत, हाँ अंदर यहां लिखा है अंतरंग शक्तियां हैं, बाहर अंग और अंतरंग दोनों समझ लीजिए। और जो बाहर अंग शक्ति है वो आठ का यहां विस्तार बताया गया है। अब उप श्लोक पे आ रहे हैं, ये पांच भूत बता दिया, और जो पांच भूत बताया तो पांच इंद्रियां ये सब इसके अंतर्गत आ गई, फिर इसके पांच तन मात्राएं आ गए, रस रत का ये आ गया ना, शब्द ये सब नाम आ गए। अब भौतिक दुनिया वाले प्रभुपाद ने, जो दुनिया में विज्ञान है वो केवल इन दस चीजों को जानता है, इससे ऊपर नहीं जानता है, वो केवल ये दस चीजें जानता है, परंतु इनसे तीन और ऊपर है, मन बुद्धि अहंकार, इसको भौतिकवादी नहीं जानते। कुछ दार्शनिक मानसिक चिंतन करते हैं परंतु उसके पीछे कृष्ण है ये नहीं जानते और नहीं मानते, और झूठा अहंकार मैं और मेरा, ये लिखा ऐसे ऐसे लिखा है, आप इसको पढ़िए समझ में नहीं आएगा, पढ़िए। झूठा अहंकार मैं और मेरा, ये है भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत। फिर क्या लिखा है, इसमें दस इंद्रियां भी गिनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब सृष्टि होती है ना तो ये भौतिक अहंकार जो है ये तमोगुण में सतोगुण और रजोगुण में चला जाता है, तो फिर जब वो तमोगुण में तो इंद्रियां निकलती हैं, रजोगुण में मन, ऐसे अहंकार से ही सब निकलती है, तो वो विस्तार नहीं किया है, लेकिन ये अहंकार से इनकी सृष्टि होती है, इसका अर्थ ये, इनकी सृष्टि अहंकार से होती है। अब एक शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, जो बुद्धि है उसको महत्तत्व कहा जाता है, बुद्ध ये है असल में बलदेव विद्याभूषण की टीका का शब्द, टोटल मटेरियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, बुद्धि को महत्तत्व कहा जाता है। वहां लिखा है एक और मन को प्रधान, क्योंकि इंद्रियों से मन नहीं जाना जा सकता है प्रधान, केवल मन से जाना जा सकता है, इसलिए मन को प्रधान कहते हैं, वो मैं समझता हूं प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है। सो बुद्धि किसका प्रतीक है, कम से कम जो लिखा है यहां उतना तो याद करो, बुद्धि किसका प्रतीक है, महत्तत्व का, और मन प्रधान का, क्यों बोला, प्रधान को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, मन से समझा जा सकता। अब ये आठ चौबीस हो जाती है प्रभुपाद जी लिखते हैं देखो, और सांख्या दर्शन ये चौबीस का विश्लेषण कहलाता है, और ये सब भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं, परंतु फिर भी नास्तिक सांख्यावादी कृष्ण को सबका कारण नहीं मानते। परंतु उनका विषय केवल भगवान की भौतिक प्रकृति ही है। अब जाते हैं हम पांचवें श्लोक पे, चौथवा, अच्छा ये तो 23 हो गए ना, 24वां है महत्तत्व, 24वां महत्तत्व, बुद्धि महत्तत्व, बुद्धि को बोलते हैं लेकिन बुद्धि अलग है और महत्तत्व 24वां है। चलो 24 अब याद कराया, 24 में तो हमने 20 तो सिर्फ साफ गुने थे ना, पांच महाभूत, 10 इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय 20 ही हो गए, मन बुद्धि अहंकार 3 एक महत्तत्व, ऐसे 24 ऐसे गिनते हैं। और इनमें आत्मा आ जाए तो 25 हो जाएंगे, वो पच्चीस हो जाएगा। फिर 27 भी कहीं लिखे हैं, क्या चीज प्रधान महत्तत्व और प्रधान में अंतर क्या है? एक ही चीज है। प्रधान का मतलब गोडाउन में रखा हुआ सामान, जैसे सामान है सारा, बहुत सामान है रसोई का, गोडाउन में बंद पड़ा है, तो उसका नाम है प्रधान। अब आने वाला है हमारे यहाँ जन्माष्टमी, सब सामान निकालो बाहर, सफाई करो, तो उसका नाम हो जाएगा महत्तत्व। वही चीज महत्तत्व है जब सृष्टि के काम में आती है, वही तब जब काम में नहीं आती है तो प्रधान कहलाती है। दोनों चीजों का, दोनों का अर्थ समझ में आया, प्रधान और महत्तत्व? जो काम में नहीं आता है तब प्रधान रहता है, जब सृष्टि के काम में आता है तो महत्तत्व होता है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, बच्चा जब तक माँ के पेट में तब तक प्रधान है, बाहर निकल के आया तो महत्तत्व हो गया, ऐसा उदाहरण देते हैं दूसरा। हाँ, महाविष्णु के पेट में रहता है, गर्भोदक्ष है विष्णु, जनरली सब माल गर्भोदक्षिण के पेट में होता है, एक ब्रह्मांड का, सब ब्रह्मांड का कारण दक्षाई के पेट में, सारे ब्रह्मांड तो उसके पेट में, एक ब्रह्मांड जो है प्रलय होगी तो गर्भोदक्षाई के पेट में जाएगा, ब्रह्मा की रात होगी तो सब गर्भोदक्षाई के, ब्रह्मा का दिन होगा फिर बाहर निकल आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। उसमें चले जाते हैं ये तो, जब जब शरीर छूट जाएगा तो क्षीरोदक्षा ही कहाँ जाएगा, गर्भोदक्षा में जाएगा। हाँ जी, ये भगवान के अंदर ही होता है, बाहर निकलता है तो इसको बाहर जब निकाला जाएगा, भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे और काल उसमें प्रवेश करेगा, तब उसमें तीन गुण, प्रधान में तीन गुण सम होते हैं, तीन गुण बिल्कुल सम स्थिति में होते हैं। जब बाहर निकाल के भगवान दृष्टि डालते हैं तो तीनों गुणों में हलचल होती है वो, और काल का प्रवेश होता है, तब सृष्टि का कर्म शुरू होता है, फिर उसमें जीवों को बिठाया जाता है और फिर ये सृष्टि का कार्य शुरू होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा श्लोक। अपरेयम इतस्त्वान्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरेयम इतस्त्व, ये तो है अपरा, ये है अपरा प्रकृति। अन्याम, इससे अलग अलग एक और है प्रकृति, विधि में परम, वो भी मेरी है परंतु उसका नाम है परम। बोला वो परम कौन है? जीव भूताम महाभाव, ये महाभाव अर्जुन वो है जीव, जिन्होंने भूत पांच भूतों का शरीर धारण किया हुआ है, जीव भूत। तो हमने आपको कभी बताया था दो प्रकार के भूत कौन से होते हैं, जीव भूत और ब्रह्म भूत। जीव भूत, जीव और बद्ध जीव, ब्रह्म भूत वो भी भूत उसमें भी लगा हुआ है लेकिन वो मुक्त है। तो ये जीवों की परिभाषा है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, ययेदम मतलब उन जीवों के द्वारा, वो जो परा प्रकृति है उसके द्वारा जगत का धारण किया हुआ है, इसका मतलब जगत उसके लिए बना है, वो ही जगत में भोग करते हैं। जगत काय के लिए है? भोग के लिए। और जीव क्या करता है उसमें? भोग करता है, वो भोग की सामग्री है। तो जगत जीव के लिए बनाया गया कि वो जड़ है, वो तो कुछ नहीं बना सकता है। जीव के भोग के लिए जगत बनाया गया, जीव के कर्मों का भोग करेगा तो जगत चाहिए, तो इसलिए जगत बनाया गया। अब बलदेव विद्याभूषण यही कहा है, इसको अपरा क्यों कहते हैं, क्योंकि दो चीजें नहीं है। क्या है दो चीजें? अपरा प्रकृति में दो चीजें क्यों, क्या अपरा क्यों है? क्योंकि ये जड़ है और भोग्य है, बस ठीक है। और दूसरी जो है वो है परा, उसमें चेतन है और भोगता है। ये दोनों शक्तियां किसकी है? भगवान कहते हैं मेरी है। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण श्रुति का, वेद का, श्वेताश्वर उपनिषद का। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, भगवान जो है स्वामी है सब जीवों का और प्रकृति का और गुणों का स्वामी है गुणेश। श्री प्रभुपाद लिखते हैं यहां स्पष्ट लिखा है कि जीव भगवान की परा प्रकृति है, ठीक है ना, जीव भगवान की परा प्रकृति, और जो अपरा है वो आठ चीजों की बनी हुई है, ठीक है। और आठ में कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल और सूक्ष्म है, पांच स्थूल हैं और तीन सूक्ष्म। अब जीव जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति को भोगता है, क्या समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या लाइन है, पढ़ो जरा इसको, पढ़ो ठीक तरह से, क्या समझ में आता है? दुनिया में सब कार्य चल रहा है क्योंकि उसके अंदर जीव शक्ति है। जीव शक्ति नहीं होगी तो वो अपने आप में न बढ़ सकती है न कुछ काम कर सकती है। तो सारे जगत का दोहन करना है, भोग करना है, वो जीव के कारण हो रहा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं एक नेम है, और नेम क्या है? शक्ति सदा शक्तिमान के द्वारा नियंत्रित होती है। शक्ति होगी तो शक्ति का शक्तिमान होगा, तो ये सारे शक्तियां और इनका शक्तिमान है भगवान। शक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती। दो बातें प्रभुपाद जी ने लिखी, ध्यान रखिए। एक बात तो ये लिखी है क्या, शक्ति सदा शक्तिमान के नियंत्रण में होगी, बस में होगी, और कभी भी, एक बात। दूसरी बात, शक्ति कभी भी शक्तिमान के समान शक्तिशाली नहीं हो सकती। ये कम बुद्धिमान वाले ऐसे कह सकते हैं, परंतु शक्ति शक्तिमान के समान कभी नहीं हो सकती। ये कहने का, ये लाइन लिखने का प्रभुपाद जी का अर्थ है कि जो लोग कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है वो ठीक नहीं। इसके लिए भागवत के 10वें स्कंद में ये है वेद की स्तुति, श्रुति स्तुति है, उसका श्लोक दिया हुआ है। पूरा श्लोक है क्या? हाँ, ये श्लोक दिया हुआ है। उस श्लोक का भाव ये है कि भगवान अगर ये जीव स्वतंत्र होते तो आपके वश में नहीं होते। ये आपके वश में है तो इनको आपका शरण लेना पड़ेगा, तभी ये सुखी रहेंगे, नहीं तो नहीं हो रह सकते। ये वेद की स्तुति के श्लोक है। क्या श्लोक क्या है? क्या मतलब इसका हुआ, पढ़िए। अब बात में तीन बातें बता दी कि जीव स्वतंत्र होते तो आपके बस में नहीं होते, ये आप में बस में हैं तो इनकी मुक्ति तब हो सकती है जब आपकी शरणागति ले। और इसका भाव क्या है, क्यों ये श्लोक याद दिया है प्रभुपाद ने, कि जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। अब आइए आगे पढ़िए, प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं एक चेतन चैतन्यमृत के श्लोक का भाव है क्या है, जरा देखो। ये लाइन एक जो लिखी है ये चेतना चैतन्यमृत का श्लोक है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य है कि नहीं, ये लिखा है क्या, संस्कृत में नहीं है ना, आप वो वही अर्थ है कि नहीं, ये आप पढ़ते जब पढ़ो तो ये समझ में आए कि ये कहाँ से लिखा है, क्यों लिखा है, मिलना है। ओनली कृष्ण इज ए कंट्रोलर राइट एंड एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय हिम। इसके बाद लिखा है वो भी ध्यान से पढ़ने जैसा है, जीव भगवान के समान गुण वाले हैं परंतु मात्रा बराबर नहीं है। अब जब जीव बद्ध जीव शरीर को मन बुद्धि अहंकार आदि ये जो आठ हैं इनका शोषण करता है, इनका भोग करता है, तब भगवान को भूल जाता है, अपने आप को स्वामी मान लेता है। और ये जो भूलना है ये माया का, माया के कारण है। प्रकृति लिखा है, प्रकृति का मतलब माया, माया उसको भुला देती है भगवान को। जब माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। और ये बंधन का कारण है झूठा अहंकार, मैं और मेरा, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये सब धन मेरा, ये सब है माया, ये झूठा अहंकार है। जब तक इनसे मुक्त होंगे और एक चीज से मुक्त होंगे तब वास्तव में मुक्ति है। वो क्या एक और चीज है, झूठे अहंकार से मुक्त हो और मैं भगवान हूं ये मूर्खता भी छोड़ दे, और ब्रह्म में लीन होने वाली मूर्खता। तो फिर सारांश ये है भगवद गीता का, जीव भगवान की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है। अगर वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से छूट जाए और कृष्ण भावना भावित हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। ये दो प्रकृतियों का वर्णन हो गया, परा और अपरा का, ठीक है। अब छठा श्लोक, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीति उपधार्य अहम् कृष्णस्य जगतः प्रलयः प्रभवस्तथा। एतद् योनिनि भूतानि उपधार्य सर्वाणि, उपधार्य का मतलब जानो, अर्जुन तुम ये जानो, समझो, क्या समझो, सर्वाणि भूतानि जो कुछ आपको संसार में दिख रहा है ये क्या है, एतद् योनिनि इति, जो कुछ दुनिया में आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ये दो ही शक्तियां हैं और कुछ नहीं, परा और अपरा शक्ति और कुछ नहीं। इन सब जो दुनिया में दिख रहा है इसकी इसकी माता ये दो शक्तियां हैं। योनि का मतलब जन्म देने वाली, जो कुछ भी दिख रहा है अब दुनिया में जो कुछ भी है ये दो ही शक्तियां हैं और कुछ नहीं। और फिर भगवान कहते अहम कृष्णस्य जगत, और ये जगत इन दो शक्तियों के द्वारा मैं प्रभव इसकी सृष्टि करता हूं और प्रलय इसका प्रलय भी करता हूं। मेरी शक्तियां हैं सब कुछ, ये जगत उससे बना हुआ है, मैं इसको उत्पन्न करता हूं और जब जाऊं तब इसका समय आएगा प्रलय भी कर लूं। ये श्लोक का अर्थ है। तो इसमें से सबसे अच्छी बात क्या है समझने के लिए, को कुछ भी उठाओ दो ही चीजें, तीसरी चीज है ही नहीं इस दुनिया में, प्रकृति है या अपरा है या परा है और कुछ भी नहीं। इतनी सारी कुछ भी वे इतना सारा विशेषताएं दिख रही है लेकिन दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं, या आत्मा है या प्रकृति के ये आठ चीजें हैं, इससे अलग कुछ नहीं। इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। एक लाइन में कहा जाए कि इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो भौतिक जगत की सृष्टि किससे होती है, दो शक्तियों के द्वारा, ठीक है। जितना अचर जगत है चर जगत है सारा चर अचर जगत इन दो सृष्टियों की ही सृष्टि है। अब एक शब्द लिखा है जो आपके आएगा 14वें अध्याय में, क्या लिखा है देखो, ये शब्द दो पढ़ो, जो अपरा प्रकृति है उसको क्षेत्र कहा जाता है और परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। लिखा है क्या, हाँ क्या लिखा है, क्षेत्र क्षेत्र क्या लिखा है कि नहीं, हाँ फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड क्या लिखा है, ये भाषा ठीक नहीं है। प्रकृति है क्षेत्र और जीव है क्षेत्रज्ञ, यहां लिखा है फील्ड, फील्ड का मतलब क्षेत्र, जैसे खेत होता है ना, खेत क्या है, जड़ है और उसमें जो किसान है जो खेत को जानता है वो चेतन है। तो ये शरीर है क्षेत्र, आत्मा है इसके अंदर क्षेत्रज्ञ, ये आएगा 14वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। परंतु यहां दो शब्द समझे, क्षेत्र क्या है, शरीर, और क्षेत्र क्या है, दो, आत्मा और परमात्मा। आत्मा एक शरीर का क्षेत्र क्या, परमात्मा सब शरीरों का क्षेत्र क्या। तो अब यहां हमने क्या सीखा, ये जो अपरा प्रकृति है और जो परा प्रकृति है इनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और यही सबका कारण है, यही लिखा, इतना ही लिखा है। और ये दोनों शक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे उत्पन्न होती है, इसलिए मैं सारे इस संसार की उत्पत्ति का प्रभाव का कारण हूं। और नहीं, ये आपके पास नहीं लिखा होगा, मैं बलदेव विद्याभूषण पढ़ रहा हूं, मैं समझा आप मुश्किल में पड़ गए, नहीं मैं देखा नहीं ऊपर बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ रहा हूं, आपके पास क्या है, आते हैं उसके ऊपर। प्रभाव और प्रलय का अर्थ हो गया। आप उपाय लिखते हैं, जो कुछ भी दुनिया में जिसका अस्तित्व है वो या तो जड़ है या चेतन है, ऐसे लिखा है ना, जड़ और चेतन लिखा है, क्या लिखा है, हाँ पदार्थ और आत्मा, ये दोनों गलत शब्द हैं, जड़ और चेतन लिखना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है मैटर एंड स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा थोड़ी है, स्पिरिट सोल थोड़ी लिखा है, जड़ और चेतन क्या है, जड़ और चेतन, जो कुछ दिखता है सब जड़ है और चेतन है, और जो चेतन है वो जड़ की उत्पत्ति का कारण है। तो जड़ को चेतन ही, इसको प्रभुपाद की भाषा में क्या कहते थे, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन जीवन से आएगा, जड़ से जीवन नहीं पैदा हो सकता। इसका मतलब जो जड़ दिख रहा है उसको पैदा करने वाला चेतन है। कोई भी जड़ चीज है उसके अस्तित्व के पीछे चेतन का होना अनिवार्य है, चेतन का होना आवश्यक है, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। कोई भी तो भौतिक जगत काय के लिए, बोला जीवों के लिए, जीव है तो भौतिक जगत है, जीव नहीं है तो भौतिक जगत को क्या करेंगे। अब प्रभुपाद जी, ये शरीर है बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, आत्मा है तो, आत्मा नहीं होगी तो कोई बढ़ेगा थोड़ी। इसका मतलब शरीर को बढ़ाने और चलाने वाली आत्मा है, सीधी सी बात है। और जैसे एक शरीर की बात है ऐसे पूरे सृष्टि को देख लो तो उसके अंदर भी आत्मा है, तो एक जगत की आत्मा कौन है? जगत की आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, एक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, और सारे भौतिक प्रकृति की आत्मा है कारण दक्षाय विष्णु। तो एक ही सिद्धांत है, जहां भी कोई चीज बढ़ती दिखाई दे, जन्म लेती दिखाई दे, तो उसके पीछे जड़ के पीछे चेतन का होना जरूरी है। अब चेतन को कोई भी पैदा नहीं कर सकता, भौतिक चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो तो पहले से है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। पैदा होता है शरीर और तब होता है जब उसमें आत्मा आती है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो पैदा होता है, जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। तो यहां अर्थ यह है कि कोई भी चीज अगर आपको दिखती है कि बन रही है तो उसके पीछे चेतन है। तो ये बड़ा पूरा ब्रह्मांड है क्योंकि इसके पीछे भगवान विष्णु है। अब ये जड़ और चेतन का मिश्रण हो गया तो ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, ये दो शक्तियां हैं। तो भगवान ही इन सब का आदि कारण है। अब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये संसार का जीव जो भगवान का एक अंश है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग बनाए, कोई एक पूरा देश बनाए, कुछ बड़ा काम कर सकता है, परंतु दुनिया थोड़ी बना सकता है, ब्रह्मांड तो नहीं बना सकता है, अपना कोठी कारखाना बना सकता है बस, और क्या कर सकता है। परंतु भगवान ब्रह्मांड का आदि आत्मा है या परमात्मा है। अब एक लाइन पढ़ो थोड़ा समझने की, सिर्फ पढ़ो क्या लिखा है, कौन सी आत्माओं के कारण है? हाँ, बिग और बड़े और छोटे आत्मा दोनों के कारण, क्या लिखा है, बड़ा और छोटा। अब बड़ा कौन सा आत्मा है, छोटा कौन सा आत्मा है? बड़ा आत्मा है एक ब्रह्मांड के अंदर और छोटा आत्मा है एक शरीर के अंदर, ये दोनों का कारण है भगवान श्री कृष्ण। परंतु दोनों में अंतर क्या है, चलो ये बता दो। बड़ा आत्मा छोटा, छोटा आत्मा, बड़ा आत्मा हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु, छोटा आत्मा हो गया हमारा आत्मा। अब दोनों भगवान, इन दोनों का कारण भगवान है, ये तो ठीक है, पर दोनों में अंतर है। छोटा आत्मा जीव है, ये भगवान की पराशक्ति है, बड़ा आत्मा भगवान का विस्तार है, विष्णु तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है। ये अंतर जरूर समझना चाहिए। छोटा आत्मा जीव तत्व है, बड़ा आत्मा विष्णु तत्व है, दोनों है, एक चीज नहीं है। परंतु दोनों का कारण कृष्ण है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, स्पष्ट है? नहीं, पहले छोटा और बड़ा आत्मा तो समझो। छोटा और बड़ा आत्मा सबको समझ में आ रहा है? छोटा आत्मा का मतलब इस शरीर को चलाने वाला जीव आत्मा, बड़ा आत्मा मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाला गर्भोदक्षा है विष्णु, जिससे तभी वो ब्रह्मांड। तो ये दोनों का कारण कृष्ण है, ये तो ठीक है, परंतु ये दोनों समान नहीं है। वो विष्णु है और ये जीव है, इतना अंतर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अब उपनिषद का मंत्र दे दिया, नित्यो नेतनानाम चेतस चेतानाम एको बहु नाम विद्याति कामन। इसका क्या अर्थ है? भगवान चेतन एक, जीव चेतन अनेक। अनेक चेतन जीवों की इच्छाएं भगवान अनादि काल से पूरी करता आ रहा है। ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, अब इस सातवें श्लोक को पढ़ लेते हैं। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मुझसे परे मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। मई सर्वम इदम हां प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। अब है उदाहरण, मुझसे परे कुछ नहीं है, सारे जगत में मैं ऐसे समाया हुआ हूं जैसे धागे में मोती समाये हुए हैं। धागा दिखता नहीं है, परंतु धागे को काट दो तो मोती बिखर जाएंगे। तो ऐसे भगवान का उपमा दी गई है धागे के साथ। कौन सा भगवान है ये? कौन सा भगवान है जो धागे के सर्वव्यापक? कौन है? खीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा, जो जगत के कण कण में है। और बाकी सब जो भी भाई दोनों जड़ है, चेतन वो शक्तियां हैं, वो है मणि, वो मणि है। तो अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए, समझ में आया आपको कि नहीं आया? मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, सब में मैं समाया हुआ हूं, जैसे धागा समाया होता है, जैसे फूलों या मोतियों में धागा होता है, ऐसे मैं संसार में समाया हुआ हूँ। मुझसे अलग कुछ नहीं है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, सब मेरे ऊपर आश्रित है। अब चक्रवर्ती बात लिखते हैं, इसके कारण मैं सब कुछ हूँ, इसके कारण मैं सब कुछ हूँ, ये है श्लोक का अर्थ। सब कुछ मैं हूँ, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कार्य कारण दोनों हूं। मैं कारण हूं और मैं कार्य हूं, जगत भी जगत है कारण कार्य, और इसके पूछे इसका कारण मैं हूं, दोनों मैं हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। जगत क्या है बोला? ये मेरी परा प्रकृति है, और इसको चलाने के लिए कौन है बोला? मेरी परा प्रकृति है। दोनों का कारण कौन है? मैं हूं। तो जगत और सबका कारण मैं हूं। और मैं शक्ति हूं और मैं शक्तिमान भी हूं, शक्ति भी मेरी और मैं उनका शक्तिमान भी, मैं शक्ति भी मेरी शक्तिमान भी मेरे। तो कारण है शक्तिमान और कार्य है शक्ति, कार्य होता है शक्ति के द्वारा और कारण होता है शक्तिमान। अब कहते हैं श्रुति में भी ये लिखा है, बृहदारण्यक के ये दोनों उपनिषद में चक्रवर्ती पाद का है। चक्रवर्ती कहते हैं अभी तक भगवान ने ये बताया कि कैसे दोनों शक्तियां मेरी है, अभी तक ये बताया। अब ये बताने जा रहे हैं कि मैं सबके अंदर समाया हुआ हूं, ये मेरा है एक बात है, पर मैं इसके अंदर समाया हुआ हूं ये दूसरी बात है। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये सब कुछ ये मेरी शक्तियां हैं, पर परंतु अब कह रहे मैं इसमें अंदर भी हूं, ये मेरी है और मैं इसके अंदर हूं। ये पूरा जगत सर्वमिदम, जिसमें जड़ और चेतन दोनों हैं, परा अपरा प्रकृति दोनों हैं, क्योंकि वो मेरे हैं इसलिए मैं उसका कारण हूं, परंतु परमात्मा के रूप में मैं इसके अंदर और प्रवेश हुआ हूं। ये दो मेरी शक्तियां हैं ठीक है, परंतु अब परमात्मा के रूप में इन दोनों के अंदर मैंने प्रवेश किया है। ये हमारे अंदर परमात्मा है, कण कण में है, जड़ जड़ में, सब कुछ सब जगह पे है, अणु परमाणु में है ना। तो पहले ये मेरी शक्तियां बताई, अब इन शक्तियों में मेरे एक और विस्तार से मैं प्रविष्ट हूं, वो है मेरा परमात्मा का विस्तार। तो अब बात क्या कही जा रही है, अभी तक ये कहा गया था कि जड़ चेतन मेरी शक्तियां हैं, अब कह रहे हैं इन दोनों मेरी शक्तियां हैं परंतु इसमें भी मैं समाया हुआ हूं। केवल मेरी शक्तियां हैं, मेरी शक्ति है मैंने पैदा करके छोड़ दी, ऐसा नहीं, इसके अंदर भी मैं समाया हुआ हूं। कैसे समाये हुए हो? परमात्मा के रूप में। और इसके लिए दिया है उदाहरण, जैसे मोती धागे के ऊपर आश्रित है, धागा सब हर एक मोती में, हर एक मोती के अंदर समाया हुआ है, ऐसे हम में से हर एक के अंदर परमात्मा प्रविष्ट है, ये इसका अर्थ है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एक संसार में सदा ही विवाद रहता है, कौन सा? भगवान साकार है कि निराकार है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य जो है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वो हर एक शास्त्र में हर स्थान के ऊपर प्रमाण दिया गया है। इस श्लोक में तो विशेष रूप से ये कहा गया है कि परम सत्य एक व्यक्ति है और ब्रह्मा संहिता में भी कहा गया, वो तो वो श्लोक सबको आता है, ईश्वर परम कृष्ण। और फिर लिखते हैं, सभी अधिकारिक शास्त्र और व्यक्ति कहते हैं भगवान परम पुरुष है, सब कारणों का कारण है, परंतु निराकारवादी फिर भी कहते हैं एक श्लोक के आधार के ऊपर के भगवान का कोई रूप नहीं। प्रभुपाद जी अब एक श्लोक दे रहे हैं श्वेता श्लोकनिषद से कि भगवान का कोई रूप नहीं है, 3:10, ततो यद उतरतम तद अरूपम अनामयम य एतद् विदो अमृतास्ते भवन्ति अथैतरे दुःखं वाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर और छोटे जीव तक, जहाँ तक देवता आदि जो भी है समझना चाहिए, ये सब मेरे हैं क्या, परंतु ब्रह्मा से परे मेरा रूप है जो जिसके अंदर कोई भौतिक, क्या ये लिखा क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? इन द मटेरियल वर्ल्ड ब्रह्मा द प्राइमरी लॉर्ड लिविंग एंड इज विद इन द यूनिवर्स इज अंडरस्टूड टू बी द सुप्रीम अमंग्स द एमिनेंट। और इस जगत में ब्रह्मा जी को समझा जाए कि सबसे महान है देवताओं में, ठीक है, परंतु ब्रह्मा से परे मैं दिव्य एक रूप है जिसके अंदर भौतिक कोई भी मिलावट नहीं है। जो उसको जानेगा, उस दिव्य पुरुष को जानेगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। अब उसमें शब्द निकले अरूप है कि वो है अरूप, माने उसका कोई रूप नहीं है। अब निराकारवादी एक शब्द को पकड़ के बैठते हैं अरूपकम, अरूपम को। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अरूपम का अर्थ यहां ये नहीं है, ब्रह्मा संहिता में लिखा है वो चेतन रूप है, जड़ रूप नहीं है भगवान का, परतत्व सच्चिदानंद रूप है। और प्रभुपाद इसी उपनिषद में इसके आगे वाले दो श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन है। इसी उपनिषद में आगे 8 और 9 श्लोक में लिखा है वेदाहम एतत् पुरुषम महात्मन आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान् नान्यो नो जायो अस्ति किंचित वृक्ष एव शब्दो द्विस्तिष्ठति एकस तेनेदं पुरुषं पुरुषेण पूर्णं पुरुषेण सर्वं। इसका अर्थ क्या लिखा है? उस भगवान को जानता हूं जो अंधकार से परे है, परम ज्योतिमान है, ठीक है, उसको जो जानेगा वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तो यहां पुरुष का उसी समय अरूप को रूप को कहा गया है, अरूप है, भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है। इन श्लोकों के आधार पर प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य जो है सर्वव्यापक है, उसकी अनंत शक्तियां हैं, वो शक्तियां भौतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी है। अब हम यहां तक ही करते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में 2 प्रश्न होंगे देखो इस विभाग में। पहला क्या प्रश्न है? अब देखो ये सबने समझ लिया कि भगवान के पुरुष अवतार कैसे सृष्टि में काम करते हैं। कारुण दक्षाई से ब्रह्मांड निकलते, हर ब्रह्मांड में क्षीरो दक्षाई प्रवेश करते और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती, फिर ब्रह्मांड में हर जो भी चीज पैदा हुई उसके अंदर क्षीरो दक्षाई प्रवेश करते। तो ये 3 पुरुष अवतार कहलाते हैं। और इसको विस्तार भी कर सकते हो, एक ब्रह्मांड की आत्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, एक शरीर के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड की आत्मा है, पूरे भौतिक प्रकृति का आत्मा जो है करुणदक्षाई विष्णु, ऐसे उसका विस्तार कुछ भी करना चाहो, ये 3 पुरुष सबको आते हैं। दूसरा क्या प्रश्न है? तो धागा है भगवान और मोती है ये जगत, जगत में जो भी जड़ और चेतन है वो दोनों भगवान की शक्तियां हैं और भगवान उन सब में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। तो धागा है परमात्मा का प्रतीक, जो है भगवान का विस्तार, जो जगत के कण कण में अणु अणु परमाणु परमाणु में समाया हुआ है, ऐसे जैसे मणियों के बीच में धागा समाया हुआ है। तो धागा है परमात्मा का प्रतीक जो भगवान का विस्तार है श्री कृष्ण का, और मणि जो है जो मोती है वो है इस जगत का हर एक पदार्थ, जड़ चेतन दोनों, जो कुछ दिखता है वो सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब क्या समझ में आया कुछ के नहीं आया? थोड़ा ही पढ़ा है हमने, 3, 4, 5, 6, 7 5 श्लोक पढ़े हैं। क्या लिखा है?
सर्वगता।
हाँ, वो आत्मा सर्वगत है। हाँ, जीवात्मा सर्वगत का मतलब है जीवात्मा हर एक लोक में जा सकता है, जीवात्मा स्वर्ग में भी जा सकता है, जीवात्मा वैकुंठ में भी जा सकता है, जीवात्मा नरक में भी जा सकता है, ये सर्वगत है, जीवात्मा सर्वगत ऐसी है। और जहां जीवात्मा भौतिक जगत में जाएगा परमात्मा उसके साथ जाएगा, वो भी सर्वगत है। भगवान सर्वगत, जीव सर्वगत कैसे है? सब जगह जा सकता है, जहां जूनी मिलेगी वहां चला जाएगा, स्वर्ग में भी चला जाएगा, नरक में भी चला जाएगा, कई कोटि ब्रह्मांडों में चला जाएगा, तो सर्वगत हो गया जीव। और जहां जीव जाएगा भौतिक जगत में परमात्मा तो उसके साथ जाएंगे ही सोहृद, तो वो भी सर्वगत है। हाँ क्या लिखा है, क्या क्या कहना कहते थे दिखाई, क्या है इसमें क्या लिखा है?
इस श्लोक में लिखा गया कि अगर जीवात्मा सर्वगत होता तो फिर वो भगवान के अधीन में नहीं,
सर्वगत नहीं, यहाँ है कि स्वतंत्र होता तो, स्वतंत्र होता तो वहाँ जहाँ भी जाता है वो भगवान के निर्देश से जाता है, अपने आप से नहीं जा सकता है। भाई जीव आत्मा को स्वर्ग में कौन भेजेगा? भाई कोई अधिकारी भेजेगा ना, अपने आप नहीं जा सकता है, स्वतंत्र नहीं है, या स्वतंत्र है, सर्वगत नहीं है, स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र होना चाहिए। क्या लिखा है? सर्वगत है,
लिखा है
अपरमिता अपनी इच्छा से सब जगह जाता है, इसका अर्थ होगा अपनी इच्छा से सब जगह नहीं जा सकता है, आपके निर्देश के अनुसार जाएगा, वो अपने आप नहीं जा सकता, अपनी इच्छा से जाए, आपके निर्देश से जा सकता है, भगवान की इच्छा से जा सकता है, अथवा अपने कर्मों से देवता उनको कहीं भेजें तो जा सकते हैं, अपने आप नहीं जा सकता है। आप ये आठवें अध्याय में पढ़ेंगे, कोई जीव यहाँ से अपने आप नहीं जा सकता है, या तो देवता कोई लेके जाएंगे, स्वर्ग में जाना है तो नरक में जाना है तो ले जाएंगे, जमदूत ले जाएंगे, और भगवत धाम जाना है तो भगवत पार्षद आएंगे, अपने आप नहीं जा सकता बेचारा, अपना अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप जाने का कोई साधन नहीं। आठवें अध्याय में हम पढ़ेंगे ये कि 12 देवता ले जाते हैं उसको, जब भगवत धाम जाना है तो जहाँ से वापस नहीं आता है, 8 देवता उसको ले जाते हैं, जो जाता है वहाँ से वापस आता है, तो एक को कहते हैं देवयान मार्ग, एक को पितृयान मार्ग, तो उसमें सब देवता हैं वो ले जाते हैं पकड़ के। जैसे प्रसाद है, महाप्रसाद अंदर से बाहर अपने आप नहीं आता है, पुजारी बाहर लाता है, है तो प्रसाद लेकिन आता पुजारी लाता है बाहर, तभी बाहर आता है, अपने आप नहीं आता है। तो ऐसे किसी कोई उठा के आता है तभी आता है बाहर, तो जीव को कोई ले जाता है तभी जाता है। अचलो यम, वैसे अचल है, एक अर्थ अचल का है, चल नहीं सकता है, कोई पकड़ के ले जाएगा तब जाएगा, परंतु एक दूसरा अचल है कि अपने स्वरूप से कभी नहीं पतन होता उसका, जैसा है वैसे ही रहता है। तो यहाँ इसका ओरिजिनल श्लोक को पढ़िए, उसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो है नहीं, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, 10वां स्कंद का अंतिम श्लोक है, नहीं इसका नहीं है।